अरे कृष्णा, तो हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवत वर्ग में। तो कई दिनों से यहाँ पर हरि नाम के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। तो हर एक स्पीकर्स के लिए एक-एक सब्जेक्ट दिया था, तो काफी सारी चर्चा पहले ही हो चुकी है। उसमें तो राधा प्रसाद प्रभु जी ने नाम अपराध के ऊपर चर्चा की है, फिर वेदांत चैतन्य प्रभु ने शुद्ध नाम के ऊपर चर्चा की है, और मुझे जो बोलने के लिए टॉपिक दिया था वो नाम आभास के ऊपर है। तो प्रयास करूंगा कि कुछ नाम आभास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान का जो नाम है ये तीन स्तर पर लिया जाता है। पहला है अपराध युक्त नाम, दूसरा है नाम आभास, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम यानी जो व्यक्ति नाम जप करता है उसमें जो 10 अपराध हो रहे हैं उसको नाम अपराध बोला है। तो राधा प्रसाद प्रभु ने बहुत ही डिटेल्स में उसके ऊपर चर्चा की है, तो उसके बारे में मैं तो अभी चर्चा नहीं करूंगा। तो शास्त्र में इसकी जो तुलना है वो नाम अपराध की जो तुलना है वो फुल ऑफ डार्कनेस की बराबर की है, यानी कि जैसे पूरा अंधकार रहता है उसकी तुलना है नाम अपराध का जो तुलना है वो अंधकार के समान की है। उसके बाद जब सूरज ऊपर आने लगता है तो जो प्रकाश है वो धुंधुला यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो उसकी तुलना नाम आभास के स्तर पर की है। और तीसरा जो नाम है वो शुद्ध नाम है, जब सूरज पूर्ण रूप से ऊपर आता है और फुल ऑफ प्रकाश यानी कि फुल ऑफ लाइट स्प्रेड होती है, तो उसकी तुलना शुद्ध नाम के बराबर की है। तो जो अपराध युक्त नाम है व्यक्ति लेने लगता है तब उसके जो लाभ है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके जो लाभ है वो सिर्फ केवल हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वो अपराध युक्त नाम अगर अपराध युक्त ही होता रहेगा, अपराध से हम अगर ऊपर उठेंगे नहीं तो फिर हम कभी भी नाम आभास के स्तर पर नहीं आ सकते हैं। तो नाम आभास के स्तर पर आना है तो हमें धीरे धीरे जो अपराध है उसको हम कम करना चाहिए। कम यानी कि अपराध न हो हमारे हाथ से, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे हाथ से अपराध होते रहेंगे तो फिर वो केवल भौतिक कामनाएं हमारी पूर्ण होती रहेगी। तो जो भी 10 नामापराध हैं हम सुबह हमेशा यहाँ पर गाते हैं, तो अपराध केयरफुली हमें सोचना चाहिए उसके बारे में कि ये हमारे हाथ से न हो, तभी हम धीरे धीरे ये नाम आभास के स्तर पर आ सकते हैं। तो नाम आभास के बारे में श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में वर्णन किया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुहु। तो आभास के बारे में यहाँ पर ऐसी चर्चा की है कि नाम आभास ये 4 प्रकार के हैं। तो पहला है सांकेत्यम, दूसरा है पारिहास्य, तीसरा है स्तोभम और चौथा है हेलनम। यानी ये जो 4 स्तर है ये 4 स्तर के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये जो 4 प्रकार है तो पहला है सांकेत्यम। तो सांकेत्यम का अर्थ है निर्देश करके बुलाना, यह है सांकेत्यम। जैसे हम 6 स्कंद में उदाहरण अजामिल ब्राह्मण का देखते हैं। अजामिल ब्राह्मण जब मृत्युशैया पर था तो उसी समय अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया और बहुत ही तीव्रता से नाम लिया, तो आभास के स्तर पर था, तो उसको सांकेत्यम बोला, यानी कि किसी को निर्देश करके हम बोल रहे हैं तो वो नाम क्या है, सांकेत्यम में आता है और वो नाम आभास के स्तर पर है। अभी इसको हम नाम आभास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्तर पर कोई कोई अपराध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नाम अवास नाम बोला है। दूसरा उदाहरण है, जैसे कि भक्ति रसाम सिंधु में उदाहरण दिया हुआ है, एक मुस्लिम व्यक्ति था और मुस्लिम व्यक्ति को एक सुअर मारने के लिए आ गया, और जब वो मारने के लिए आया तो मुस्लिम व्यक्ति ने सुअर को निर्देश करके बोला कि हराम हराम हराम, और हराम 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 बोलते वक्त मुस्लिम लोगों को सुअर यानी बहुत तुच्छ प्राणी है, तो इसलिए वो उनको हराम बोलते हैं। तो जैसे सुअर ने मारा तो उसकी उसमें मृत्यु हो गई, तो हराम 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 बोलने से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और तीसरा उदाहरण है, हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त है अभी मुरिश संन्यास एकदम कानन महाराज, तो उनका जो पहला जीवन था वो भक्त नहीं थे उसी समय का, तो उन्होंने घर में एक कुत्ते को पाला था, और कदम कानन महाराज जब वो यूएस में रहते थे तो उनका एक प्रिय व्यक्ति था उधर का, वो एक सिंगर था, उसका नाम था कृष्णा रेड्डी, तो बहुत प्रिय था उनको, और महाराज को प्रिय था उनका घर का कुत्ता, तो महाराज जी ने अपने कुत्ते को नाम दिया था कृष्णा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो कुत्ता था वो कुत्ता घर से बाहर निकल गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया, जैसे भरत महाराज का हिरण वापस नहीं आया वैसे इनका भी कुत्ता वापस नहीं आया, तो वो ढूंढने के लिए बाहर निकले और बहुत देर तक ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, तो बाद में उन्होंने सोचा कि उसका अगर मैं नाम लूंगा तो फिर वो मिल जाएगा, तो कृष्णा 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 ऐसे नाम लेकर वो घूम रहे थे। तो घूमते घूमते बाजू की गली में एक हमारा हरे कृष्णा का भक्त था, वो बराबर उसी समय कृष्णा बुक बेच रहा था, अभी उसको मालूम नहीं कि ये व्यक्ति कृष्णा का नाम क्यों ले रहा है। तो हमारे भक्त उनके पास गए, वो पूछे उन्होंने कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, अरे हमारे कृष्णा को ढूंढ रहा हूं मैं। भक्तों को समझ में नहीं आया कि कृष्णा कौन है, तो बोला कि कृष्णा की सब इंफॉर्मेशन ये किताब में दी है, आप लेंगे किसको? तो उनको बहुत ही आश्चर्य लगा कि अरे मेरे कृष्णा की इंफॉर्मेशन इसमें सब है, यानी कि मेरे कुत्ते की इंफॉर्मेशन सब इसमें है तो महाराज जी ने तुरंत वो बुक लिया और देखने लगे, तो अंदर सब अलग ही दिखने लगा, लेकिन उन्होंने रखा वो किताब क्यों? क्योंकि ये मेरे कुत्ते के बारे में है तो किताब लेकर घर आए, और घर आने के बाद उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, और पूरी किताब पढ़ने के बाद उनको किताब इतनी अच्छी लगी, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन था, बाद में उनका कुत्ता भी घर से वापस आ गया, लेकिन उनको समझ में आया कि कृष्णा नाम केवल मेरे कुत्ते का नहीं है, या वो कृष्णा रेड्डी जो बड़ा सिंगर है उसका भी नहीं है, ये तो कृष्णा नाम के कोई तो भगवान व्यक्ति है। तो उन्होंने वो पूरा किताब पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद बाजू में निकट एक सेंटर था उसमें वो जाने लगे, और धीरे 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 इतने बड़े भक्त बन गए, आज वो इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं कदम कानन महाराज तो ये नाम हवास का जो परिणाम है इस तरह होता है, ये पहला है सांकेत्यम। दूसरा है पारिहास्य। पारिहास्य यानी कि व्यक्ति नाम लेता है लेकिन वो जोकिंगली लेता है, जोकिंगली यानी कि हम ऑफिस में काम करते या कोई कंपनी में काम करते तो बोलते लोग ना, वो आज हरिबोल आया नहीं रे, आज वो हरिबोल मालूम है क्या, वो कल रिक्शा से गिर गया तो हंसी मजाक में जो बोलते हैं ना, तो उसको पारिहास्य बोला है। ये भी नाम आवास के स्तर पर है, क्योंकि इसमें कोई अपराध नहीं हो रहा इसलिए उसको पारिहास्य बोला है। तीसरा है स्तोभम। स्तोभम यानी संगीतमय, यानी कि कुछ कर्मनुक यानी कि मनोरंजन के रूप में जो नाम लिया जाता है उसको स्तोभम बोला है। शोभम यानी कि हम कभी कभी देखते हैं कि नगर संकीर्तन करने के लिए हम बाहर जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर के भी हमें देखने के लिए आते हैं, और कोई कोई शराबी रहता है, कोई कोई ऐसे मनोरंजन के लिए आता है, और बीच में हाथ ऊपर करके के हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा ऐसे करके डांस करते रहता है, तो स्तोभम में आता है। कभी कभी हम भी यहाँ पर सब ब्रह्मचारी गण हमारे कीर्तन करते हैं, और कुछ लोग बाहर से आते हैं और बैठते हैं और एकदम ध्यान लगा के ऐसे गाते तो नहीं लेकिन ऐसे ऐसे करते और बीच बीच में हरे कृष्ण क्योंकि पूरा मंत्र भी मालूम नहीं होता है उनको, तो हरे कृष्ण हरे राम करते करते वो गाते रहते हैं, तो जो नाम है वो स्तोभम में आता है, ये भी आभास के स्तर का नाम है। और चौथा है हेलनम, हेलनम यानी कि उपेक्षा किया हुआ नाम, उपेक्षा यानी कि उसको रुचि नहीं उतनी लेकिन उपेक्षित कर रहे हो, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, एक मुस्लिम काजी होता है और वो हरि नाम को बहुत विरोध करता है, और विरोध करता है तो महाप्रभु के एक पार्षद है गदाधर दास, गदाधर पंडित और गदाधर दास ये दोनों अलग है, तो गदाधर दास ये बहुत बड़े प्रचारक होते और ऐसे प्रचारक होते कि वो पशु पक्षियों को सर्प को शेर को भी हरिनाम देते थे, तो लोगों ने उनको बताया कि आप तो सब लोगों को हरिनाम दे रहे लेकिन यहाँ पर जो काजी मुस्लिम है वो लेकिन हरिनाम नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो गदाधर दास जी को बहुत गुस्सा आता है और सोचते हैं कि मैं आज ही क्या करूंगा, एक काजी को हरिनाम दूंगा। तो अकेले उसके महल में जाते हैं, जाकर उसका गला पकड़ते हैं। अभी हम तो ऐसा नहीं कर सकते, गला पकड़ते हैं वो गला पकड़ते हैं और गला पकड़ के उनके छाती के ऊपर बैठते हैं, और छाती के ऊपर बैठने के बाद बोलते हैं कि अरे तुम हरि का नाम नहीं ले रहे रे। तो काजी बोलता है, काजी भी डर जाता है कि अरे इसने इतना डेरिंग किया, यानी इसके पीछे कोई तो बल रहेगा, तो डर जाता है और डरने के बाद बोलता है कि मैं आज नहीं कल लूंगा हरि का नाम। तो गदाधर दास जी बोलते हैं कि आपने हरि नाम ले लिया है, मेरा जीवन सफल हो गया और आपका भी जीवन सफल हो गया। तो ये जो नाम है वो उपेक्षा के रूप से लिया हुआ नाम है, इसमें कोई अपराध नहीं है। दूसरा उदाहरण इसमें आता है, जब हरिदास ठाकुर जी को बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान जी एक वेश्या को भेजते हैं, तो जब वेश्या आती है हरिदास ठाकुर जी को विचलित करने के लिए, तो वेश्या देखती है कि हरिदास ठाकुर जी को तो मैं ऐसी आसानी से विचलित नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो भी क्या करती है, हरिदास ठाकुर जी की जैसी नकल करना शुरू करती है, वो भी भगवान का नाम लेने लगती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो नाम है उपेक्षा के रूप में वो ले रही है लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन उसमें अपराध भी नहीं है। तो नाम लेने लगती है तो धीरे 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 हरिदास ठाकुर जी की जो कृपा है, उनका जो प्रभाव है, उसके कारण वो धीरे 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 पूरा नाम लेने लगती है, पूरा मंत्र लेने लगती है, हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा जाप करने लगती है, धीरे धीरे उसके हृदय में पूरा परिवर्तन होने लगता है, तुलसी जी का जो पेड़ रहता है उसको जलदान करना शुरू करती है, कुछ परिक्रमा करने शुरू करती है, और धीरे 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 वो भगवान की शुद्ध भक्त बन जाती है। ये तो हरिदास ठाकुर जी की महिमा है, लेकिन शुरू में जब वो नाम लेती है तो वो नाम उपेक्षा के रूप में वो लेती है, तो इसलिए वो नाम आभास में आता है और हेलनम प्रकार में आता है। तो इस तरह ये जो नाम आभास के चार प्रकार है, अगर अभी इसमें से कोई भी व्यक्ति ये नाम आभास लेते रहा है तो धीरे 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 वो नाम जप करने शुरू कर सकता है, लेकिन ये जो नाम है आभास के स्तर पर, ये नाम आभास बाद में अपराध में भी परिवर्तित हो सकता है, समझ रहे हैं। ये जो प्रकार हमने देखे, सांकेत्यम पारहस्यम वा स्तोभम हेलनम, ये जो चार प्रकार है, अगर इसमें से कोई व्यक्ति भक्त के संपर्क में आता है और रेगुलरली रिस्पेक्टफुली यानी कि आदरयुक्त भाव से भगवान का नामस्मरण शुरू करता है तो धीरे 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 उसके हाथ से भी अपराध होना शुरू हो जाता है, और फिर 10 नाम अपराध उसको जब समझ में आता है तो वो भी क्या होता है, अपराधयुक्त स्तर पर आता है, और जब वो 10 नाम अपराध को पार करता है तभी वो नाम आभास के स्तर पर स्थिर हो जाता है, यानी कि हम जो जप अभी कर रहे हैं ये जप कभी अपराधयुक्त स्तर पर है कभी आभास के स्तर पर है, कभी अपराधयुक्त स्तर पर है कभी आभास के स्तर पर है, किसी का मेजोरिटी नाम अपराध होगा और माइनॉरिटी नाम आभास होगा, किसी का मेजोरिटी नाम आभास होगा और माइनॉरिटी नाम अपराध होगा, तो हमें अपने आप को जज करना है कि बाबा मेरा जो जप है वो आभास के स्तर पर है या अपराध के स्तर पर है? अपराध के स्तर पर है, इसका मतलब कि हम भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, भक्तों का दोष देख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम ध्यान से जप नहीं कर रहे हैं, और हमारे हाथ से मेजोरिटी वही अपराध होता है। हमारे हाथ से जो अपराध हो रहा है वो ध्यान से जप न करने के कारण ही हो रहे हैं। तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं ध्यान को जप करूं। अगर हम प्रयास कर रहे हैं ध्यान से जप करने का, और बाकी जो 9 अपराध है उसको भी टालने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो नाम जप नाम आभास के स्तर पर है। अगर हम 10 नाम अपराधों को टालने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, तो हम नाम आभास के स्तर पर नाम जप कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। अगर हमारे हाथ से गलती से अपराध हो रहे हैं तो भगवान उसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन जानबूझकर अगर हम अपराध कर रहे हैं तो फिर हम अपराध के स्तर पर ही रहेंगे। तो गौर गोविंद महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, अगर कोई साधक नाम आभास के स्तर पर नामस्मरण कर रहा है तो उसी जीवन में वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। नाम आभास यानी कि सूरज ऊपर आ रहा है, प्रकाश थोड़ा धुंधुला दिख रहा है, यानी कि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो आभास के स्तर पर नाम रुचि का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता रहेगा, कभी कभी आंखों से आंसू आएंगे, शरीर के ऊपर कभी कभी रोमांच आएंगे, और कभी कभी कुछ अलग अलग अनुभव भी आते रहेंगे, आभास के अनुभव है। अभी हम यहां पर सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं, हर एक के आंखों से एक ना एक दिन कभी ना कभी तो आंसू आए हैं, है कि नहीं? कभी ना कभी नामस्मरण करते वक्त, कथा सुनते वक्त रोमांच आए हैं, आंसू आए हैं। जिस समय हमारे आंखों से आंसू आए हैं उसी समय हमने जो नाम लिया है वो नाम आभास के स्तर का नाम है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल न होने के कारण फिर हम अपराध करते हैं तो फिर वो अपराध में जाता है। तो इसलिए स्टेबल रहने के लिए हमेशा ध्यान से जप करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा ध्यान से जप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम नाम आभास के जो लाभ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, कुछ लाभ के बारे में भी मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। तो जब व्यक्ति नाम आभास लेना शुरू करता है तब उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है पूर्ण रूप से वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, यानी कि 95% 99% ऐसा बोल सकते हैं, 100% तो नहीं बोल सकते क्योंकि कभी अपराध है कभी आभास है, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी उसमें मैटर करेगा, पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो जाएगा। दूसरा लक्षण है कलयुग के जो परिणाम है वो सब परिणाम से वो मुक्त हो जाएगा। चौथा लक्षण है भौतिक चेतना है उससे वो मुक्त हो जाएगा, यानी कि भौतिक विषय सुनने में कुछ रुचि नहीं रहेगी उसको, वो हमेशा भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान की कथा के बारे में, भक्तों के संग में रहने का प्रयास करेगा, वो लक्षण है, यानी कि भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। चौथा बताया है भूत प्रेत पिशाच ये जो असुरी योनि है वो कभी भी उसको तकलीफ नहीं देगी, यानी कभी कभी हमें अनुभव होता है ना सपने में भूत आया, भूत ने पकड़ा, छाती के ऊपर बैठा था, ऐसा कुछ अनुभव होता है, तो इससे भी वो मुक्त हो जाता है। बहुत सारे हमारे ब्रह्मचारी लोगों को इसका अनुभव है। जैसे ही आभास के स्तर पर साधक आता है तो ये सब जो भी भटकने वाले जीव है वो कभी तकलीफ नहीं देंगे, आएंगे आपको मिलने के लिए लेकिन कृपा लेने के लिए आएंगे, आपकी कृपा लेने के लिए आएंगे। फिर आगे कुछ लक्षण है वो व्यक्ति भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, बीमारी का भय नहीं रहेगा, कुछ भय नहीं रहेगा, भय से मुक्त हो जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा, व्यर्थ चिंता नहीं करेगा। फिर आत्मिक शांति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आभास के स्तर पर जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो उसके जीवन में आत्मिक शांति की अनुभूति होने लगेगी और बाद में प्रसन्नता की अनुभूति, हमेशा वो आनंद में रहेगा, स्पिरिचुअल ब्लिस का अनुभव करेगा। बाद में बोला है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चीज तो उसको ऐसे आसानी से प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरी बताया है लक्षण, उसी जीवन में उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, यह है नाम आभास के लक्षण। लेकिन ये जो नाम आभास है, ये नाम आभास जब साधक ध्यान से जप करने का हमेशा के लिए प्रयास कर रहा है तभी ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। और आभास के बाद तीसरा नाम है वो शुद्ध नाम है। शुद्ध नाम में जो लक्षण बताया है, ऐसा बोला है कि जो साधक शुद्ध नाम जप कर रहा है, जैसे उसके मुख से नाम आएगा तो तुरंत उसके आंखों से आंसू आएंगे हमेशा के लिए। वो ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा आ गए फिर निकल गए, बाद में वेट करते रहेगा कब आंसू आएंगे कब आंसू आएंगे, तो आंसू आने के लिए भी रोना पड़ेगा तभी वो आएंगे। तो जो शुद्ध नाम है, शुद्ध नाम केवल भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही आएगा। तो नवदीपति प्रभु हमारे एक स्टोरी बताने थे कल, एक महाराज जी कथा बता रहे थे एक भक्त के बारे में। तो भक्त ऐसे घर से निकला था और मंदिर में जा रहा था, तो मंदिर में जा रहा था तो जाते वक्त उसको स्पीकर के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जो धुन है वो सुनने को आए। जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र की धुन उनके कर्णरंध्र से हृदय में प्रविष्ट हो गई तो वो मंत्र सुनने के बाद तुरंत उनको मूर्छा आ गई। ये है शुद्ध नाम का लक्षण। हम देखते हैं जब नारायण चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में कीर्तन कर रहे थे तो उसी समय महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जी को बोले कि वो जो छोटी बच्चे उसको लेके आओ मेरे पास, मैं उसको कृष्ण नाम देने वाला हूं। तो भी महाप्रभु की कृपा हम देख सकते हैं। तो महाप्रभु ने नारायण को बोला कि अरे बोलो तुम, हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। तो जैसे वो नारायण छोटी बच्ची थी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगे, जैसे उच्चारण करने लगी तो तुरंत वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने लगे, और केवल विकार प्रकट नहीं किए, नाम लेते लेते वो वहां पर मूर्छित हो गई। तो ये शुद्ध नाम के लक्षण है। फिर हम जो धोबी को क्या बोलेंगे हिंदी में, धोबी कपड़े कपड़ा धोने वाला, जब चैतन्य महाप्रभु उसको हरिनाम देने के लिए गए थे तो जैसे ही उसने हरिनाम लेने को शुरुआत किया तो हम देखते हैं कि उसके भी शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। तो ये है शुद्ध नाम के लक्षण। पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण देखते हैं, अहो बकियम सनकाल कूटम, जैसे भागवतम का श्लोक गदाधर पंडित जी ने उद्धृत किया तो तुरंत ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्ण रूप से भावगौर हो गए, और इतना भावगौर हो गए कि उनके उनके जो आजू बाजू के सेवक थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना वो भावगौर हो गए। मुकुंद सरकार का उदाहरण है, जब वो नवाब हुसैन शाह के राजा के सामने जाते हैं तो राजा का एक सेवक उनको मोरपंख का फैनिंग करा था, तो जैसे वो मोरपंख को देखते हैं देखने के बाद तुरंत मूर्छित हो जाते हैं। ये सब शुद्ध भक्ति के लक्षण है, ये शुद्ध नाम के सब लक्षण है। तो शुद्ध नाम के स्तर पर आने के लिए हमें नाम आभास जो है, यानी कि नाम आभास के स्तर पर हमें नाम जप करना चाहिए, और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं ध्यान से जप कर रहा हूं कि नहीं, तभी हम धीरे 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 शुद्ध नाम के स्तर पर आ सकते हैं। तो हम अभी कुछ थोड़ा टेक्निक्स देखेंगे कि हम कैसे ध्यान से नाम जप कर सकते हैं। कुछ दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, वेदा चैतन्य प्रभु और हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि कैसे हम ध्यान से जप कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स मैंने निकाले हैं और मैं उसके अनुसार थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, तो कुछ मात्रा में यश भी प्राप्त हो रहा है। तो उसमें चार स्तर बताया है। तो उसमें पहला है, हम जब नामस्मरण करते हैं तो पहली सोच हमें होनी चाहिए कि जो भी नाम मैं ले रहा हूं वो क्या मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं क्या, यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पष्ट उच्चारण हमारा होना चाहिए। ये पहली चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए नामस्मरण करते वक्त। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या मैं ध्यान से जप कर रहा हूं क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज इसमें है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और हार्ट के स्तर पर, गुरु जी ने बताया था। तो शरीर के स्तर पर जब हम जप कर रहे हैं तो एक जगह को हमें चूज करना चाहिए पहले। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने भजन कुटीर उन्होंने बनाई थी और भजन कुटीर में वो जप करते थे। भजन कुटीर में क्यों जप करते थे, वो क्यों हमारे जैसे ओपन स्पेस में बैठकर या चलते फिरते ऐसे जप नहीं करते थे? क्योंकि अगर हमें इंद्रियों को और माइंड को फोकस करना है तो ऐसी जगह को ही हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए, तभी हमारा नामस्मरण है वो ठीक से हो सकता है। तो पहला चीज है हमारी जो शरीर की पोजीशन है वो ठीक से होनी चाहिए, यानी कि किसी एक जगह पर अगर हम बैठ सकते हैं, हमें बैठने की आदत है तो वो जगह पर हम बैठकर नाम जप कर सकते हैं। किसी को नीचे बैठने की आदत नहीं है तो फिर वो चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन चेयर के ऊपर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठेंगे तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा पीठ है पीठ में हमारे सब कॉन्सेंट्रेशन करने के पॉइंट्स हैं। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो फिर वो ध्यान करने के लिए आसान जाता है। और तीसरी चीज है वो यानी कि हार्ट के स्तर पर, यानी कि प्रेफुल मूड होना चाहिए। कृष्णानंद प्रभु कुछ दिन पहले यहाँ पर क्लास दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए, दो उदाहरण मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर हमने बहुत अच्छा स्वीटरस बनाया है, बहुत गाढ़ा स्वीटरस बनाया है, उसको फ्रिज में भी रखा है, लेकिन एक चीज भूल गए उसमें शक्कर डाली नहीं है, तो क्या वो खाने के लिए अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें शक्कर डाली नहीं। वैसे ही अगर हमारा हार्ट चैंटिंग में नहीं है तो फिर वो नाम जप कैसे बिना शक्कर का है? अगर हमने अच्छी तरह से सब्जी बनाई है, सब तरह के जो भी चीजें है उसमें डाल दिए, लेकिन एक चीज हम भूल गए, कौन सी? उसमें नमक नहीं डाला है, तो क्या सब्जी अच्छी लगेगी? दिखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन खाने में उसको कुछ टेस्ट नहीं आएगी। वैसे ही नमक जो है वो प्रेफुल मूड के समान है, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो नाम में उतरना चाहिए, तभी वो नाम में क्या होने वाला है, रुचि आने वाला है। तो पहला चीज है शरीर के स्तर पर, माइंड के स्तर पर और हृदय के स्तर पर, ये तीन चीज होनी बहुत जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, जब हम नामस्मरण करते हैं तो शुरू करने से पहले ही हमें सोचना है कि मैं नामस्मरण करूंगा लेकिन वो ध्यान से करने का प्रयास करूंगा, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे नहीं ना तो ये कभी नहीं होने वाला है, यानी कि हम अगर नहीं सोचेंगे कि मैं ध्यान से जप करूंगा, ऐसा हम सोचेंगे नहीं ना तो हम कभी भी ध्यान से जप नहीं कर सकते। ये चीज ऐसी नहीं है कि मेरे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल के बाद तो मेरा ध्यान से होने ही वाला है, कभी नहीं होने वाला है। 25 साल क्या, 40 साल भी होंगे ना तो भी हम ध्यान से जप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, यानी कि सोचना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं कि नहीं ध्यान से जप, मैं तो अभी 15 साल के बाद सोच रहा हूं। और कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत सोचा था कि सही में हम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं लेकिन सही में हम हर एक अक्षर को सुन रहे हैं क्या, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी भी मैंने जप किया लेकिन हर अक्षर को नहीं सुना, क्योंकि अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, थोड़ा सा बिजी हूं इसलिए वो सुन नहीं पा रहा हूं। लेकिन क्या हम हर अक्षर को सुन रहे हैं क्या, वो छोड़ो, पहले तो हमें पूरा मंत्र चल रहा है ना उसके ऊपर तो कम से कम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। मैं जप करने के लिए बैठा हूं लेकिन सही में मैं क्या ध्यान से कर रहा हूं क्या जप, तो कम से कम हमें इतना तो सोचना चाहिए, मैं 16 माला तो हर रोज कर रहा हूं, कम से कम हम अगर इतना भी सोचेंगे कि 16 माला में से एक माला तो मैं कम से कम आज ध्यान से करने का प्रयास करूंगा, तो इसका मतलब कम से कम हमने डिसीजन तो लिया है कि मैं ध्यान से जप करूंगा। अगर डिसीजन लिया ही नहीं है, डिसाइड किया ही नहीं है तो कभी नहीं होने वाला है। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मैं आज ध्यान से जप करूंगा, उसके बाद जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे कृष्णा से शुरुआत हो रही है और हरे हरे से एंड हो रहा है कि नहीं? तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, जब हम ये जप कर रहे हैं तो उसके बीच में हमारे मन में कितने थॉट्स आ रहे हैं, विचार कितने आ रहे हैं। हरे कृष्णा इतना ध्यान से करेंगे ना तो कृष्णा कृष्णा के बाद वो मन निकलने वाला है और कोई दूसरे थॉट्स के ऊपर जाने वाला है, और हरे राम 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 तक सब भूल जाएंगे और हरे हरे के ऊपर ध्यान में आएगा कि अरे हाँ माइंड हमारा निकल गया है। तो इतना सोचना पड़ेगा तभी हम जो विचार मन में आ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा निकालने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो हमें तुरंत थोड़ा सा जोर से नाम जप लेना चाहिए। महाराज सचिनंद महाराज का एक किताब है, उसमें मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें बताया है, जो भी हम जप कर रहे तो हरे कृष्णा ये जो पहले चार अक्षर है उसको थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो मन को लगेगा कि अरे हाँ हरे कृष्ण कम से कम उतना तो ध्यान से सुन रहा हूं, है ना। फिर धीरे 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 समझ में आएगा कि हरे कृष्ण सुन रहे लेकिन आगे कुछ कुछ नहीं सुन रहे हम, आगे का तो स्किप हो रहा है। तो धीरे 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 ऐसे करते रहेंगे तो फिर ध्यान में आना चाहिए कि हरे कृष्ण जैसे सुन रहे ना वैसे हरे राम भी सुनना चाहिए। तो हरे कृष्ण के ऊपर जैसे हम फोकस कर रहे वैसे ही फोकस हरे राम के ऊपर भी करना चाहिए। अगर हम फोकस करेंगे तो राम राम हरे हरे जो आगे का है ना वो भी थोड़ा उसको टच हो जाएगा। वो बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि उसके लिए बहुत यानी कि बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिनेंट बनना पड़ेगा तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमारे जीवन में कुछ बहुत सेवा बढ़ जाती है, कुछ समस्या आती है, कुछ इधर उधर की चीजें आती है दिमाग में, तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि अरे वो करना चाहिए। कुछ दिन के लिए वो होगा, अभी जो एज अप है कुछ दिन के लिए हम कर सकते हैं, एक दो तीन चार दिन के लिए होगा, चार दिन के बाद धीरे धीरे हम भूल जाएंगे इसको। फिर वैसे मराठी में एरे माजा मागल्या ताक करने चांगले तसे ते वो मराठी में बोलते हैं इसे। वो फिर से वापस माइंड है ना, कुत्ते का पूंछ है ना वो टेढ़ा रहता है, वैसे मन भी हमारा टेढ़ा है तो बाद में वैसे घुसने वाला है। तो हमेशा के लिए हमें वो प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे मन भूल जाता है तो तुरंत नाम जप का जो स्पीड है हमारा, स्पीड में भी थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कभी हम स्लो कर सकते हैं। स्लो जब अगर हम कर रहे हैं ध्यान से हो रहा है तो स्लो जब भी अच्छा है, कुछ जरूरत नहीं कि छह मिनट में माला होना चाहिए, पांच मिनट में माला होना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं, या साढ़े सात मिनट में माला होना चाहिए, ऐसा भी कुछ जरूरत नहीं। अगर हमारा नाम जब ध्यान से हो रहा है तो वो स्पीड अच्छा है, वो फिर सात मिनट में हो रहा है, छह मिनट में हो रहा है, उसमें कुछ ये नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। तो इसलिए ध्यान से जब करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे हम पहले देखो, हम सबने रेडियो मालूम है, रेडियो है कि नहीं? तो रेडियो का जो दो बटन थे, एक ऊपर का और एक नीचे का, एक वॉल्यूम का बटन था और एक उसको सेटिंग करते थे, ट्यूनिंग सेट करना था, है कि नहीं? और जो बड़ा बटन था ना, जब हम वो स्टेशन के ऊपर लेके जाते थे तो स्टेशन क्लियर नहीं होता था तो बाकी सब आवाज उसमें आते हैं। जैसे कि पहले सांगली स्टेशन लगता था, हमारे घर पे एक रेडियो था, आकाशवाणी सांगली केंद्र, आकाशवाणी पुणे केंद्र। तो जब हम पुणे केंद्र लगाते थे तो पुणे का केंद्र सेट होने के बाद उसमें सातारा का आवाज आएगा, सांगली का आवाज आएगा, इधर उधर के थोड़े थोड़े आवाज आएंगे और बारीक थोड़ा सा आवाज वो पुणे का भी आएगा, लेकिन उसको अगर हम पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे तो बाकी आवाज डिलीट हो जाते थे। तो ट्यूनिंग सेट करना यानी क्या है, हरे कृष्णा का हम जप कर रहे हैं लेकिन बाकी सब आवाज आ रहे हैं उसमें, मेरा आज राजभोग का सेवा है, मेरा आज कुकिंग का सेवा है, मेरा आज पिचिंग को उधर जाना है, इधर जाना है, और ये सेवा वो सेवा वो सब आवाज आते रहते हैं बीच में से। और मैनेजर रहेगा तो उसको तो बहुत सारे आवाज आते हैं, उसको तो ब्रह्मचारी की आवाज सुनने को आती है, मेरे को सर्दी हो रहा है, मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये दर्द है, वो सब आवाज उसको सुनने को आता है। तो वो आवाज निकालने के लिए उसको बहुत परिश्रम लेना पड़ता है, तो उसका ट्यूनिंग सेट करना बहुत कठिन जाता है उसको। लेकिन जो थोड़ा फ्री है, कुछ सेवा नहीं है, वो थोड़ा सा ट्यूनिंग सेट करने में उसको आसान जाता है। जैसे ट्यूनिंग सेट होता है तो आवाज क्लियर सुनने को आती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो आवाज है वो क्लियर सुनने के लिए आना चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा जोर से जप करना चाहिए शुरुआत में। तो जैसे वो सेटिंग हो जाएगी, एक बार लिंक लग गई ना, तो फिर वो लिंक लग जाते हैं। और ये लिंक है, जैसे हम सुबह जप करते हैं तो बराबर लिंक लग जाते हैं। तो ध्यान से जप करना बहुत जरूरी है। ग्रॉस ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग बोला है उसके बारे में। ग्रॉस ट्यूनिंग यानी कि सब प्रकार के आवाज उसमें आ रहे हैं, और फाइन ट्यूनिंग यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र को हम क्लियरली धीरे 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 सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए कुछ पॉइंट्स है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, वो है भावपूर्ण होना चाहिए। अभी तो स्पष्ट उच्चार होना चाहिए, दूसरा चीज ध्यान पूर्वक जप कैसे करना है इसके बारे में चर्चा की, तीसरा है हृदय से जप हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ध्यान से जप करने को शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 उसमें भाव भी आएगा, यानी कि हमारा हृदय जो है उसमें संलग्न हो जाएगा। तो जब हृदय हमारा संलग्न हो जाएगा तो हमारा जो जप का स्पीड है वो भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो भाव से जप, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हम तोते को भी सिखाते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो तोता भी बोलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है कि नहीं। तो अगर वो तोते को बिल्ली पकड़ती है तो तोते का हरे कृष्ण नहीं निकलता उस समय, उसका जो आवाज है वो अलग रूप से निकलने को लगता है। तो इस तरह हमारा ध्यान से जब हो रहा है कि नहीं, जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स कुछ समस्याएं कुछ सेवाएं आती है बढ़ जाती है, तो अभी तो उसी समय हमारा जो जप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा जप समझना चाहिए कि वो तोते के समान है, यानी कि मैं तो वैसे ही जप कर रहा हूं, यानी कि जब समस्या आती है तो ध्यान से जप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हम ध्यान से जप कर रहे तो फिर उसमें भाव भी आते रहेगा। जैसे जनक महाराज का एक स्टोरी है। तो जनक महाराज एक बार जंगल में जाते हैं तो उनके हाथ से एक पाप हो जाता है, और पाप होने के बाद रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई देता है। तो आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में जाने के बाद उनको एक साधक मिलता है, और साधक को बोलते कि देखो मेरे हाथ से एक पशु की हत्या हो गई, तो उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि आप 3 बार राम का नाम लीजिए, राम राम राम, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो जनक महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं, 3 बार राम नाम लेते हैं, और राम नाम होने के बाद फिर वहां से निकल रहे होते तो उसी समय वहां पर वशिष्ठ मुनि आते हैं। और वशिष्ठ मुनि जनक महाराज जी को पूछते हैं कि महाराज जी क्या समस्या है, आज यहां कैसे आए आप। तो जनक महाराज बोलते कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ से एक पाप हुआ था, तो मुझे साधक ने आपके बताया है कि 3 बार अगर मैं राम का नाम लूं तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि उनको आश्रम में बुलाते हैं और पूछते हैं कि किसने आपको बताया कि 3 बार नाम लेने से पाप मुक्त हो जाते हैं। तो बोलते कि ये साधक ने मुझे बताया कि 3 बार नाम लेना है पाप से मुक्त होना है। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं ये मूर्ख है, 3 बार नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, केवल 1 ही बार नाम लेना है। आप एक भी बार नाम लेंगे ना तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा बोलने के बाद जनक महाराज जी को आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे, क्योंकि वशिष्ठ मुनि को मालूम था कि जनक महाराज है शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको 3 नाम लेने की भी जरूरत नहीं, वो 1 नाम से ही क्या होने वाले है, मुक्त होने वाले। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम अभी भगवान का नाम ले रहे तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि अरे 1 नाम तो काफी है भगवान के धाम में जाने के लिए, सब पाप से मुक्त होने के लिए। लेकिन वो शुद्ध नाम 1 आने के लिए हजारों बार नाम लेना पड़ेगा। जैसे हमें अगर शेर की शिकार करनी है, अगर आपके पास बंदूक दी है उसमें 1 ही गोली डाल के रखी है और बोला है कि जाओ शेर की शिकार करके आओ, क्या हम शेर की शिकार कर सकते हैं? शेर की तो नहीं होगी लेकिन हमारी निश्चित रूप से होगी है कि नहीं, शेर हमें ही खाने वाला है उसमें। तो अगर शेर को मारना है तो उसके लिए हमें हजारों गोलियों की फायरिंग पहले करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस हमें पहले करने पड़ेगी, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं शेर को मारने के लिए। वैसे हमें अगर शुद्ध नाम लेना है तो हजारों बार हमें क्या करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, तभी एक भावपूर्ण चैंटिंग है वो हमारे हृदय से आ सकता है। तो इसके लिए हमें ध्यान से जप करने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हृदय से जप करना है तो ये सब चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और चौथा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, वो है सतर्कता, अलर्टनेस। हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए कि जो मैं जप कर रहा हूं क्या मैं स्पष्ट उच्चार कर रहा हूं हरि नाम का, ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, क्या मैं ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा हूं या नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी चीज होनी चाहिए वो कि क्या मैं हृदय से यानी कि भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं क्या। गुरु महाराज को प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रार्थना हमें करनी चाहिए, नाम प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए और विग्रह को भी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी क्या होने वाला है उसमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। तो हमेशा सतर्क होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा चेकआउट करना चाहिए कि क्या मैं ये सब फॉलो कर रहा हूं क्या नामस्मरण के समय। जैसे हम रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त हम स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हैं और कोई व्यक्ति पीछे से खाने के लिए देता है, तो भी थोड़ा जलेबी ले लो ना खाने के लिए, तो हम खाएंगे क्या उसी समय? अगर हम ट्रैफिक में है, आगे गाड़ी है, बाजू में गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे थोड़ा रुको, गाड़ी रुकाने के बाद मैं खाऊंगा लेकिन अभी मत दो कुछ, है कि नहीं? मोबाइल फोन भी आएगा तो भी हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम क्या चल रहा है, गाड़ी चलाना काम चल रहा है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। वैसे ही हरिनाम लेते वक्त अगर हम थोड़ा भी इधर उधर हो रहे हैं तो हमारा माइंड इमीडिएटली डाइवर्ट होने वाला है, इमीडिएटली इधर उधर जाने वाला है। तो हमेशा हमें वो सोचना चाहिए कि क्या मैं सही में नामस्मरण करते वक्त ट्रैक पे हूं क्या, हमेशा वो चेकआउट करते रहना चाहिए। जैसे हम शेविंग करते हैं, शेविंग करते समय भी हम कितनी सतर्क होते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हम हिल जाएंगे, कुछ इससे उससे बात करते रहेंगे तो फिर क्या होने वाला है, खून आने वाला है। तो नामस्मरण के समय हमेशा हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं ये चीज है इसको मैं ध्यान से कर रहा हूं क्या। अभी कोई 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 लोग ऐसे चल के जप करते हैं या इधर उधर देखते हुए जप करते हैं, या कोई मोबाइल तो अभी कॉमन चीज हो गई, मोबाइल में देखते रहते हैं, तो ये जो नामस्मरण है वो नामस्मरण है ही नहीं, ये अपराध में ही है। जब तक हम एक ही जगह पर बैठकर उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं तब तक हम आभास के स्तर पर नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा 99% जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो हरि नाम के ऊपर है। हमने दुनिया की सब चीजों को छोड़कर इधर आए है कि नहीं, और इधर आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। निग्लेक्ट कर रहे यानी कि हरि नाम को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इसके कारण ही सब चीज गलत हो रही है। तो इसलिए हमें आभास के स्तर पर आना है, तो हमें अपराधयुक्त स्तर के अपराधयुक्त स्तर से ऊपर उठना है तो पहले 10 नाम अपराध को हमें टालना चाहिए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है ध्यान से जप न करना, ये भी एक अपराध है, वही इंपॉर्टेंट अपराध हमारे हाथ से होता है, तो उसको हमें हमेशा के लिए प्रयास करना चाहिए कि ध्यान से जप करने के लिए। फिर धीरे 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 आभास के स्तर पर आएंगे, आभास के स्तर पर हम जब स्थिर हो जाएंगे तभी हम धीरे 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 शुद्ध नाम की तरफ हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर शुद्ध नाम लेना बहुत मुश्किल है। शुद्ध नाम के बारे में तो ऐसा बोला है कि एक शुद्ध नाम है, एक शुद्ध नाम से प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है, और दूसरा शुद्ध नाम है वो कृष्ण प्रेम देता है, इतनी महिमा शुद्ध नाम की बताइए। तो शुद्ध नाम की तरफ हमें अग्रेसर होना है, बढ़ना है, तो हमें आभास के स्तर पर आना चाहिए। आभास के स्तर पर हम स्थिर हो जाएंगे तभी धीरे धीरे वो शुद्ध नाम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह आज की चर्चा है, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
प्रभु की
जय हो। हाँ हाँ तो प्रभु जी का प्रश्न है कि टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है या प्रार्थना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो दोनों भी चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। केवल प्रार्थना करेंगे और नाम जप ऐसे ही चल रहा है, भगवान देखेंगे, भगवान कृपा करेंगे, चल रहा है ऐसे, तो फिर वो भी होने वाला नहीं है। समझ रहे? सिंसियरिटी भी होनी चाहिए हमारी, टेक्निक्स भी हमें यूज करना चाहिए, हमारी सिंसियरिटी भगवान को दिखानी चाहिए। सिंसियरिटी दिखाना है और प्रे भी करना है। सिर्फ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आश्रय नहीं ले रहे हम भगवान के नाम का, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले रहे, गुरु महाराज और प्रभुपाद का आश्रय नहीं ले रहे, तो भी होने वाला नहीं है। सिर्फ टेक्निक्स आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं, समझ रहे? तो टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, हरे कृष्ण। हाँ यस। हाँ, दोनों का भी रोल इम्पोर्टेंट है। सर्विस इंचार्ज ने भी ऐसे बीच में आकर नहीं बताना चाहिए, पहले उसने प्लानिंग अच्छी तरह से करना चाहिए, और अगर बताना भी पड़ रहा है तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताना चाहिए कि बाबा ऐसे ऐसी समस्या आ रही है और ये इम्पोर्टेंट सेवा है, तो जो जब कर रहा है उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए और सर्विस इंचार्ज को भी समझना चाहिए। दोनों का भी रोल इम्पोर्टेंट है। अगर इमरजेंसी आ रही है, कोई नहीं है, तो फिर उसी समय थोड़ा सा समझ के लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों का। तो सर्विस इंचार्ज का रोल है किस तरह वो बता रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का भी रोल इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, तो चल के जपा हम कर सकते, लेकिन सोलह माला के बाद। हाँ, सोलह माला पहला अच्छी तरह से करना है बैठ के, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा राउंड है ना, वो चल के इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट सोलह माला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी पूछ रहे कि सोलह माला करने के लिए ही तकलीफ हो रही है, तो फिर चेयर में बैठकर कर सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर बैठकर जप करना चाहिए। सोलह माला तो कम से कम एक ही स्थान पर बैठकर करना चाहिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चैंटिंग है वो चलकर करना चाहिए। कर सकते हो, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी का एक लेटर है एक डिसाइपल्स को, तो उन्होंने बताया कि 16 राउंड्स, गुड 16 राउंड्स, 16 माला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो आप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने तो ऐसे एक ही जगह पर बैठ के जप करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन किसी को बैठने के लिए तकलीफ है, घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए वो जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि सोलह माला एक ही जगह पर, किसी को अगर तकलीफ है थोड़ा चलकर कर सकता है, माइंड डिस्टर्ब है, कुछ समस्याएं है, तो थोड़ा चल के करेंगे ना तो थोड़ा सा माइंड स्थिर भी होता है। एक ही जगह पर बैठेंगे ना तो बहुत घूमते रहता है माइंड, ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन जैसे आप उठेंगे थोड़ा चलेंगे ना तो फिर वो स्थिर हो जाता है। वो टेक्निक्स है, अपना अपना टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, थोड़ा चलेंगे ऐसे 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 स्थिर हो जाएगा, स्थिर होने के बाद फिर बैठ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। वो अपना अपना अनुभव, धीरे धीरे हर एक को अलग अलग अनुभव आता है। कभी कभी एक ही जगह पर बैठने के बाद भी माइंड आपको ऐसा घुमाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा चलेंगे ना तो फिर स्थिर हो जाता है, फिर बैठना चाहिए स्थिर होने के बाद। हाँ, तो इसलिए तो उनका मैं नाम ले रहा था हमेशा। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।